एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हस्ती की जिनकी कहानी सिर्फ चमक धमक की नहीं है, बल्कि जबरदस्त उतार चढ़ाव, खुद को मतलब बार बार नए सिरे से गढ़ने और अपनी शर्तों पर जीने की कहानी है। हम बात कर रहे हैं चेर की।
चेर, हाँ।
और उनकी हालिया आत्मकथा चेर द मेमोयर पार्ट वन, उसके पहले हिस्से पर यह चर्चा आधारित है।
बिल्कुल। चेरलिन सार्किशन यानी चेर एक ऐसा नाम है जो 6 दशकों से, सोचिए, पॉप कल्चर का हिस्सा रही है।
6 दशक?
हाँ, गायिका, फिर ऑस्कर जीतने वाली अभिनेत्री, टीवी स्टार, फैशन आइकॉन, मतलब पहचाने कई हैं।
सही कहा।
लेकिन ये किताब सिर्फ उपलब्धियों की लिस्ट नहीं है, ये उस सफर की कहानी है कि कैसे एक बेहद शर्मीली, असुरक्षित लड़की, जिसे लगता था कि वो कहीं फिट नहीं होती, वो दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक बनी।
और ये सफर जाहिर है आसान तो बिल्कुल नहीं था।
ये किताब हमें दिखाती है कि मुश्किलों से जूझने का जज्बा,
हाँ
लचीलापन जिसे कहते हैं,
हाँ हाँ वही लचीलापन, और हालातों के हिसाब से खुद को बदलने की कला, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी जीने के जरूरी हुनर है असल में।
बिल्कुल। उनकी कहानी देखिए दक्षिणी कैलिफोर्निया के बेहद गरीब बचपन से शुरू होती है और हॉलीवुड के शिखर तक पहुंचती है।
हाँ, जहाँ वो मूनस्ट्रक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीतती हैं।
क्या बात है।
ये उनके जीवन के पहले करीब 40 सालों का लेखा जोखा है।
अच्छा।
इसमें है कि कैसे वो लोक रॉक स्टार बनी, फिर एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकली जिसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं था।
ये सोनी की बात हो रही है।
हाँ, सोनी बोनो। और फिर एक गंभीर अभिनेत्री के तौर पर पहचान बनाने का जो कड़ा संघर्ष था, वो सब है इसमें।
सही कहूं तो ये किताब फिर आत्मविश्वास और हिम्मत से लिखी गई एक तरह की जिंदगी की गाइडबुक जैसी लगती है।
हाँ, कह सकते हैं एक सर्वाइवल मैनुअल जैसी, चमक और हिम्मत के साथ लिखी हुई।
तो चलिए इस कहानी की तहों में उतारते हैं, शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। कैलिफोर्निया का एल सेंट्रो, गरीबी और
अस्थिरता।
उनके शुरुआती सालों पर उनकी माँ जॉर्जिया होल्ड का बहुत गहरा असर था। जॉर्जिया खुद बहुत खूबसूरत थी।
एक्ट्रेस बनने की उनकी अपनी अधूरी ख्वाहिशें थीं और उनकी जिंदगी भी काफी उथल पुथल भरी रही। 8 बार शादी की उन्होंने।
8 बार?
हाँ, जिसमें 2 बार तो चेर के पिता से ही। लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को, मतलब अपने तजुर्बों से सिखाया कि मुश्किलों में डटे कैसे रहना है।
ये तो बहुत जरूरी सीख है।
बिल्कुल। हालात इतने मुश्किल थे कि कभी कभी चेर और उनकी बहन जॉर्जियन को कुछ वक्त अनाथालय में भी बिताना पड़ा। और इसका नतीजा ये हुआ कि चेर के मन में गरीबी और बेसहारा होने का डर, वो बहुत गहराई तक बैठ गया।
और पिता जॉन सार्किशन, उनका क्या रोल था?
वो एक ट्रक ड्राइवर थे, दिखने में आकर्षक, पर ज्यादातर चेर की जिंदगी से गायब ही रहे।
अच्छा।
उन्हें जुए और हेरोइन की लत थी। किताब बताती है कि चेर हमेशा, मतलब अपने पिता की कमी महसूस करती थी, और शायद इसी अधूरी चाहत ने बाद में उन्हें ऐसे पुरुषों की तरफ खींचा जो उम्र में बड़े हों, सुरक्षा देने वाले लगे, लेकिन साथ ही कंट्रोल करने वाले भी हों।
ये तो एक पैटर्न बन गया फिर। बचपन की बात करें तो वो खुद को हमेशा बाहरी महसूस करती थी।
हाँ, बिल्कुल। एक तो अपनी वो थोड़ी अलग गहरी अर्मेनियाई शक्ल सूरत की वजह से, और दूसरा उन्हें एक अनदेखी चुनौती थी, डिसलेक्सिया, मतलब शब्दों को पढ़ने समझने में दिक्कत, और तब किसी को पता नहीं था इसके बारे में।
तो स्कूल तो बहुत मुश्किल रहा होगा उनके लिए।
बहुत ज्यादा सीखना उनके लिए अक्सर अपमानजनक अनुभव बन जाता था। टीचर्स को लगता था वो ध्यान नहीं देती हैं या कोशिश नहीं कर रही हैं। तो इसी माहौल से बचने के लिए वो सिनेमा के पर्दे पर सपनों की दुनिया में खो जाती थीं। ऑड्री हेपबर्न उनकी आइडल थीं।
अच्छा।
और उन्होंने तभी ठान लिया था कि वो स्टार बनेंगी। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, शायद मुश्किल हालात से निकलने का एक रास्ता खोजने जैसा था।
हाँ, एक तरह का एस्केप। स्कूल में मुश्किलें तो बनी रहीं डिसलेक्सिया की वजह से, उन्हें ये जो पारंपरिक पढ़ाई लिखाई का सिस्टम था उस पे भरोसा ही नहीं रहा।
बिल्कुल। और फिर 16 साल की उम्र में एक बड़ा फैसला।
हाई स्कूल छोड़ दिया?
हाँ, हाई स्कूल छोड़ा और लॉस एंजलिस जाने का निश्चय किया।
16 साल की उम्र में अकेले?
हाँ, सोचिए 1960s का दशक, एक अकेली 16 साल की लड़की लॉस एंजलिस पहुंचती है, कितना रोमांचक और साथ ही कितना डरावना रहा होगा।
यकीनन।
और वहीं 1962 में एक कॉफी शॉप में उनकी मुलाकात हुई साल्वाटोर सोनी बोनो से।
सोनी बोनो?
चेयर सिर्फ 16 की थी और सोनी उनसे 11 साल बड़े, 27 के। सोनी उस वक्त के जाने माने म्यूजिक प्रोड्यूसर फिल स्पेक्टर के साथ काम करते थे।
अच्छा, फिल स्पेक्टर वॉल ऑफ साउंड वाले?
हाँ वही, जबकि चेयर बिल्कुल अनजान थी। चेयर को सोनी में कोई मतलब रोमांटिक स्पार्क नहीं दिखा, उन्हें एक सहारा नजर आया।
और सोनी उनके लिए वो सहारा बने भी, पहले एक दोस्त रूममेट की तरह, फिर मेंटोर, पति और म्यूजिकल पार्टनर।
बिल्कुल, चेयर ने फिल स्पेक्टर के मशहूर वॉल ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग सेशन में बैकग्राउंड में गाना शुरू किया। वहां उन्होंने हिट गाने बनाने की कला सीखी, उसकी बारीकियां समझी।
और फिर सोनी एंड चेयर का जन्म हुआ?
हाँ, सोनी का आइडिया था। चेयर शुरू में बहुत हिचकिचा रही थी, उन्हें स्टेज पे जाने से डर लगता था। लेकिन सोनी ने उन्हें मनाया, जोर दिया, और फिर 1965 में उनका गाना आया आई गॉट यू बेब,
क्लासिक,
और वो रातों रात स्टार बन गए। पॉप कल्चर में धमाका था वो गाना, उनका अंदाज, वो बेल बॉटम पैंट, फर वाली जैकेट, लंबे सीधे बाल।
हाँ हाँ, वो लुक तो आइकॉनिक है।
बिल्कुल, उस पीढ़ी का स्टाइल स्टेटमेंट बन गया, हालांकि पुरानी पीढ़ी को ये सब थोड़ा ज्यादा लगता था।
होता है, ये तो हुई पर्दे की बात, लेकिन असल जिंदगी में क्या चल रहा था, किताब इस पर कुछ बताती है?
हाँ, किताब बताती है कि पर्दे के पीछे सोनी का पूरा कंट्रोल था
हर चीज पर।
हाँ, म्यूजिक पर, पैसों पर, करियर के हर फैसले पर। चेयर ने तो कई कॉन्ट्रैक्ट्स बिना पढ़े ही साइन कर दिए थे।
अरे,
और जैसे जैसे चेयर बड़ी हो रही थी, समझदार हो रही थी, उन्हें ये कंट्रोल घुटन जैसा लगने लगा था।
समझ आता है। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी पॉप स्टार वाली चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी, कर्ज चढ़ गया।
बिल्कुल, उन्हें छोटे छोटे सपर क्लब में गाना पड़ा।
ओ।
लेकिन फिर सोनी ने एक जबरदस्त चाल चली। 1971 में वो लेकर आए द सोनी एंड चेयर कॉमेडी आवर।
हाँ, ये टीवी शो तो जबरदस्त हिट था।
बहुत बड़ा हिट। इसने ना सिर्फ उनके डूबते करियर को बचाया, बल्कि उन्हें पहले से भी बड़ा स्टार बना दिया।
टीवी पर तो उनकी केमिस्ट्री गजब की लगती थी, वो नोकझोंक करने वाले प्यारे कपल।
हाँ, स्क्रीन पर तो वही दिखता था, लेकिन किताब के मुताबिक असल में ऐसा नहीं था।
अच्छा,
स्क्रीन पर उनका वो मजाक और नोकझोंक असल जिंदगी के बढ़ते दर्द और तनाव का एक तरह से प्रतिबिंब बन गया था। पर्दे के पीछे उनकी शादी टूट रही थी।
ओह।
चेयर को टीवी का काम पसंद था, कॉमेडी करना, स्केच, बॉब मैकी के वो शानदार कॉस्ट्यूम्स पहनना।
हाँ, वो कॉस्ट्यूम्स तो कमाल थे।
बिल्कुल। लेकिन वो रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रही थी, घुटन महसूस कर रही थी, और इसी दौरान उन्होंने एक अहम कदम उठाया।
कौन सा कदम?
उन्होंने शो में अपने लिए एक अलग म्यूजिकल स्पॉट की मांग की, जहां वो अकेले परफॉर्म कर सकें।
अच्छा, ये पहली बार था?
हाँ, ये पहली बार था जब उन्होंने सोनी के बनाए दायरे से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। ये उस मुखौटे में पहली दरार थी, कह सकते हैं।
और फिर वो दौर आया जब ये रिश्ता, ये साझेदारी पूरी तरह टूट गई। ये तो बहुत पब्लिक और दर्दनाक रहा होगा।
बेहद। 1974 में चेयर ने सोनी को छोड़ने का फैसला किया। किताब जोर देते हैं कि ये किसी एक झगड़े या घटना का नतीजा नहीं था। ये सालों से अंदर ही अंदर जो चल रहा था, वो एहसास के उन्हें जानना है कि वो सोनी के बिना सिर्फ चेरिलिन साकीशियन के तौर पे कौन है।
ये तो बहुत बड़ा फैसला था। इसके बाद तो कानूनी लड़ाई शुरू हुई होगी।
हाँ, और वो लड़ाई बहुत कड़वी थी। उस वक्त के कैलिफोर्निया के कानूनों के हिसाब से उन्होंने जो साम्राज्य मिलकर खड़ा किया था, उसमें से उन्हें लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा था।
क्या?
हाँ, उन्हें अपनी मेहनत की कमाई और अपने बच्चे चार्ल्स की कस्टडी दोनों के लिए लड़ना पड़ा। ये उनके लिए धोखे और अकेले लड़ने के जज्बे की कहानी बन गई। बहुत मुश्किल दौर था वो।
सोनी के कंट्रोल से आजाद होकर अपना करियर बनाना कैसा रहा होगा? मतलब आजादी तो मिली होगी, पर डर भी तो लगा होगा।
बिल्कुल, आजादी देने वाला भी था और
डराने वाला भी।
लेकिन उन्होंने कर दिखाया। उनका अपना टीवी शो आया चेयर, वो कामयाब रहा। टेक मी होम जैसे गाने हिट हुए। इसी दौर में उनकी जिंदगी में रॉकस्टार ग्रेग ऑलमन आए।
ओह, ग्रेग ऑलमन।
उनके साथ रिश्ता तूफानी था, जुनूनी, लेकिन आखिरकार नाकाम रहा। ग्रेग की नशे की लत से उन्हें जूझना पड़ा। उनके दूसरे बेटे एलिजा ब्लू का जन्म भी इसी दौरान हुआ।
तो ये दौर एक तरह से खुद को खोजने का दौर था उनके लिए।
हाँ बिल्कुल, पहली बार वो अकेले अपने करियर और जिंदगी की मालिक थी, एक सिंगल मदर थी और शोहरत की दुनिया के दांव पेट सीख रही थी। लेकिन 70 के दशक के अंत तक उनका म्यूजिक करियर फिर से ठंडा पड़ने लगा।
और यहीं से शुरू होती है उनकी शायद सबसे हैरत अंगेज वापसी, एक गंभीर अभिनेत्री बनने का सफर। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि हॉलीवुड उन्हें गंभीरता से कहां लेता था।
हाँ, बिल्कुल नहीं लेता था। उन्हें बहुत मजाक और संदेह का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें बस एक टीवी पर्सनालिटी या गाने वाली गुड़िया समझते थे। लेकिन फिर निर्देशक रॉबर्ट ऑल्टमैन ने उन पर भरोसा दिखाया। उन्होंने चेयर को 1982 में ब्रॉडवे प्ले कम बैक टू द फाइव एंड डाइम जिमी डीन में कास्ट किया।
ब्रॉडवे पर लाइव थिएटर का डर भी तो होगा।
बहुत था, लेकिन चेयर ने शानदार काम किया और आलोचकों ने उनकी बहुत तारीफ की। ये उनके लिए एक बड़ा मोड़ था।
इस कामयाबी ने फिर आगे के दरवाजे खोले होंगे यकीनन।
बिल्कुल। इसके बाद उन्हें मिली सिल्कवुड फिल्म। उसमें उन्होंने मेरिल स्ट्रीप जैसी दिग्गज अदाकारा के सामने काम किया।
मेरिल स्ट्रीप?
हाँ, और अपना पहला ऑस्कर नॉमिनेशन हासिल किया।
वाह।
फिर मास्क और द विचेस ऑफ ईस्टविक जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक पॉप स्टार नहीं बल्कि एक दमदार अभिनेत्री भी हैं। उन्होंने इंडस्ट्री के जो पूर्वाग्रह थे उन्हें तोड़ दिया।
और फिर आया वो शिखर, वो पल जिसका हर कलाकार सपना देखता है, 1988 में मूनस्ट्रक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर। किताब इस पल को कैसे बयां करती है?
किताब बताती है कि जब उनका नाम पुकारा गया तो वो पल उनके लिए अविश्वसनीय था, जैसे वो अपने शरीर से बाहर निकलकर सब देख रही हों।
समझ सकता हूँ।
ये सिर्फ एक फिल्म में उनके अभिनय का सम्मान नहीं था, ये उस लड़की के लिए जीत थी जिसे डिसलेक्सिया था, उस पॉपस्टार के लिए जिसे कहा गया था कि वो एक्टिंग नहीं कर सकती, और उस औरत के लिए जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी और करियर बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। किताब का पहला भाग इसी शानदार विजयी नोट पर खत्म होता है।
वाह, इस पूरी जबरदस्त यात्रा को देखते हुए चेयर की जिंदगी का मूल मंत्र क्या नजर आता है? उनका कोर फिलॉसफी क्या रही?
किताब से जो सबसे बड़ी बात उभरती है वो है खुद को गढ़ने की जिद, जिसे हम कह सकते हैं रेडिकल सेल्फ क्रिएशन।
रेडिकल सेल्फ क्रिएशन, दिलचस्प शब्द है।
हाँ, वो किस्मत के भरोसे बैठने वालों में से नहीं है। वो मानती हैं कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति से अपनी राह बना सकता है। वो जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने वाली एक यथार्थवादी योद्धा हैं, प्रैक्टिकल सर्वाइवर। उनके लिए पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो पानी की तरह है जिसे जरूरत और हालात के हिसाब से बदला जा सकता है और बदलना ही चाहिए। उनका फलसफा साफ है, या तो अपनी जिंदगी के निर्माता बनो या फिर किसी और की बनाई दुनिया के शिकार।
ये बात उनकी उस मशहूर कहावत से भी झलकती है जब उनकी माँ ने उन्हें सलाह दी थी कि किसी अमीर आदमी से शादी कर लो।
हाँ, और उन्होंने जवाब दिया था, माँ मैं ही एक अमीर आदमी हूँ।
बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में रखने की बात है।
सही कहा। और उनकी प्रेरणा क्या रही, क्या चीज उन्हें आगे बढ़ाती रही?
किताब दो मुख्य चीजों की ओर इशारा करती है। पहला, डर।
डर?
हाँ, वो डर जो बचपन की गरीबी से पैदा हुआ था, बेबसी और नजरअंदाज किए जाने का डर, इसी डर ने उन्हें हमेशा अथक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
अच्छा।
और दूसरा, अवज्ञा का भाव, डिफायंस, हर उस इंसान और सिस्टम के खिलाफ जिसने उन्हें बांधने या कमतर आंकने की कोशिश की।
जैसे स्कूल के टीचर, रिकॉर्ड कंपनी के ऑफिसर, सोनी, हॉलीवुड प्रोड्यूसर।
हाँ, वो सब। और शायद सबसे ज्यादा वो उस अंदर की डरी हुई लड़की को साबित करना चाहती थी कि वो अब सुरक्षित है और उसकी एक पहचान है।
और मुश्किलों का सामना करने का उनका तरीका क्या रहा है?
वो मुश्किलों से भागती नहीं, सीधा टकराती हैं, अक्सर अपने स्टाइल और हाजिर जवाबी को हथियार बनाकर।
हाँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है।
बिल्कुल, जब उनकी आलोचना होती है, चाहे उम्र को लेकर या पहनावे को लेकर, तो वो पीछे हटने के बजाय और ज्यादा मुखर हो जाती हैं।
जैसे 1986 के ऑस्कर समारोह में उनका वो मशहूर लिबास, वो पंखों वाला हेडड्रेस और पेट तक खुला हुआ।
हाँ, किताब में वो बताती हैं कि वो सिर्फ फैशन नहीं था, वो हॉलीवुड को एक जवाब था, क्योंकि उन्हें लगा था कि मास्क फिल्म में उनके काम को नजरअंदाज किया गया है।
वाह, मतलब जानबूझकर किया गया एक डिफायंट एक्ट।
बिल्कुल, उन्होंने उन चीजों को ही अपनी ताकत बना लिया जिन्हें लोग उनकी कमजोरी समझते थे, उनकी उम्र, उनका अलग दिखना, उनका गंभीर ना माना जाने वाला बैकग्राउंड। वो अपनी लड़ाई खुलकर अपने अंदाज में लड़ती हैं।
उनकी जिंदगी में यकीनन कई अहम मोड़ आए होंगे। अगर तीन सबसे बड़े मोड़ चुनने हों जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
मुश्किल है चुनना, पर हाँ, पहला तो निश्चित रूप से 1962 में सोनी बोनो से मिलना ही होगा।
हाँ, वहीं से शुरुआत हुई।
बिल्कुल, यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। 16 साल की उम्र में एक 27 साल के अनुभवी इंसान से मिलना, जिसने उन्हें सहारा दिया, आत्मविश्वास दिया और म्यूजिक इंडस्ट्री का रास्ता दिखाया।
लेकिन
उसी रिश्ते ने उन पर कंट्रोल और निर्भरता का एक पैटर्न भी बनाया, हाँ, जिसे तोड़ने में उन्हें एक दशक से ज्यादा लग गया। ये उनकी जिंदगी का एक बुनियादी रिश्ता था, अच्छे और बुरे दोनों मायनों में।
सही, दूसरा मोड़ कौन सा था?
मेरे ख्याल से दूसरा सबसे अहम मोड़ था 1974-75 में उनका सोनी से तलाक और अपनी आजादी के लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ना।
हाँ, वो बहुत निर्णायक था।
सोनी को छोड़ना सिर्फ एक शादी का अंत नहीं था, ये 28 साल की उम्र में पहली बार अपनी जिंदगी और करियर का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में लेने का एक बहुत मुश्किल और डरावना फैसला था।
और फिर वो कानूनी लड़ाई अपनी कमाई पर हक के लिए।
हाँ, वो उनके लिए बिजनेस और आत्मरक्षा का एक कड़वा सबक साबित हुई। इस अनुभव ने उन्हें एक सुरक्षित लेकिन नियंत्रित स्टार से एक समझदार, आत्मनिर्भर और अपनी लड़ाई खुद लड़ने वाली महिला में बदल दिया।
और तीसरा
निर्णायक मोड़ था 1982 में ब्रॉडवे पर उनका डेब्यू कम बैक टू द फाइव एंड डाइम प्ले के साथ।
हाँ, जिससे एक्टिंग करियर की राह खुली।
बिल्कुल, ये उनकी जिंदगी के दूसरे और शायद सबसे अप्रत्याशित अध्याय की शुरुआत थी। उस वक्त उनका म्यूजिक करियर ढलान पर था, ऐसे में कम पैसों पर ब्रॉडवे में काम करना एक बहुत बड़ा जुआ था।
लेकिन वो सफल रहा।
हाँ, जब आलोचकों ने उनके काम को सराहा तो उन्होंने सिर्फ एक पॉप सिंगर होने की अपनी छवि को तोड़ दिया। इसी एक घटना ने उनके लिए फिल्मों के दरवाजे खोले और साबित किया कि उनकी प्रतिभा लोगों की सोच से कहीं ज्यादा गहरी और विविध थी।
चेयर की कहानी वाकई सिर्फ एक मशहूर हस्ती की कहानी नहीं लगती, इसमें ऐसे कई सबक हैं जो शायद हम सभी की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं।
बिल्कुल, सबसे पहला और जरूरी सबक तो यही है कि खुद को बदलना, नए सिरे से गढ़ना जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए जरूरी है।
हाँ, अतीत को अपने भविष्य पर हावी न होने देना।
सही कहा। दूसरा बड़ा सबक है आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व, खासकर महिलाओं के लिए।
बिल्कुल, अपनी कमाई पर अपना अधिकार होना ही सच्ची आजादी है। उनका संघर्ष इस बात का प्रतीक है।
और एक बात जो उनकी पूरी कहानी में दिखती है वो है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। उन्होंने कई रूप बदले, कई किरदार निभाए, लेकिन उनका जो असली बेबाक अंदाज है,
हाँ, शायद वही दर्शकों को दशकों से उनसे जोड़े हुए हैं।
शायद वही। और चौथा सबक है कि अपनी कमजोरियों या डर को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है।
ये बहुत गहरी बात है। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कलात्मक उड़ानें अक्सर उनकी गहरी असुरक्षा और डर के क्षणों से ही निकली हैं।
बिल्कुल। और आखिर में उनका अटूट लचीलापन, रेजिलियंस।
हाँ, वो तो कमाल का है। पेशेवर नाकामयाबी, लोगों का मजाक, निजी जिंदगी में दिल टूटना, उन्होंने सब कुछ झेला और हर बार न सिर्फ खड़ी हुई
बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा प्रामाणिक और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरी।
सही कहा। वो उन सब लोगों के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में ठोकर खाकर गिरते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, दलितों और वापसी करने वालों की संरक्षक संत जैसी।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कंट्रोल करने वाले रिश्तों से बाहर निकला जा सकता है, कैसे सीखने की चुनौतियों जैसे डिस्लेक्सिया या असुरक्षाओं पर जीत हासिल की जा सकती है।
हाँ, और कैसे समाज के बनाए पैमानों जैसे लिंग भेद या उम्र को लेकर जो सोच है उसको चुनौती दी जा सकती है।
ये एक सजी संवरी परफेक्ट कहानी नहीं बल्कि एक उलझी हुई सच्ची जिंदगी का सफर है।
अच्छा, अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो तीन मुख्य बातें क्या होंगी जो श्रोताओं के साथ रह जाएं? पहली, कोई भावनात्मक सीख।
मेरे लिए सबसे गहरी भावनात्मक सीख है उस वैश्विक सुपरस्टार के पीछे छिपी उस असुरक्षित लड़की, एल सेंट्रो की डरी हुई लड़की का द्वंद्व, जिसे हमेशा लगता था कि वो कहीं फिट नहीं होती हैं। ये विरोधाभासी है कि उनकी यही अंदरूनी कमजोरी शायद उनकी दुनिया जीत लेने वाली महत्वाकांक्षा का ईंधन बनी। जैसा उन्होंने खुद कहीं कहा है, टेलीविजन पर, ड्रेसिंग रूम में, हम दोनों सही थे।
वाह, मतलब हमारे अंदर के डर और हमारी बाहरी ताकतें एक साथ मौजूद रह सकती हैं।
बिल्कुल, बौद्धिक स्तर पर देखें तो।
बौद्धिक स्तर पर जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि चेयर का करियर कोई तुक्का नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये सोच समझकर बड़ी चतुराई से किए गए बदलावों की एक पूरी श्रृंखला थी। वो ब्रांडिंग और करियर मैनेजमेंट की एक जीती जागती मिसाल है।
सही।
कैसे एक लोक रॉक हिप्पी से वो टीवी की ग्लैम क्वीन बनी, फिर डिस्को दीवा और फिर ऑस्कर जीतने वाली अभिनेत्री। उन्होंने सिर्फ वक्त के चलन को पकड़ा नहीं बल्कि कई बार चलन बनाए उनमें जमाने की नब्ज को पहचानने की एक अद्भुत क्षमता रही है।
हाँ, कल्चरल ज़ाइटगाइस्ट को समझने की, और अंत में एक सार्वभौमिक सीख जो हम सबके काम आ सकती है,
वो है लचीलापन, रेजिलियंस।
हाँ,
जिंदगी आपको तोड़ सकती है, मुश्किलें आपको गिरा सकती हैं, लेकिन आप हमेशा खुद को फिर से जोड़ सकते हैं, शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत और दिलचस्प शक्ल में।
आपकी कहानी तब तक खत्म नहीं होती
जब तक आप उसे लिखना बंद नहीं कर देते। जैसा चेयर के हवाले से कहा गया है, इंडस्ट्री आपको कई बार खारिज कर देगी, लेकिन अगले अध्याय की कलम आपके ही हाथ में है।
क्या बात है, ये याद रखना जरूरी है कि अपनी कहानी का अगला पन्ना हम खुद लिखते हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।